नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों दूसरे कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 1 पद से 13 पद तक का मनन चिंतन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीव तो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबकी सहायता करें ताकि आपके वचन को हम समझ सकें, सुन सकें और ग्रहण कर सकें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, किसी न किसी प्रकार के उलझन में हैं। आप उन सब की भी सहायता करें ताकि वे अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय फिर से एक बार हम सबके साथ होइए, हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि पौलुस अपनी सेवकाई के दौरान प्रेरिताई के बारे में उसने हमें बताया है और उस सेवकाई के द्वारा से उसने क्या कुछ नहीं सहा, इन सारी बातों को भी उसने हमें बताया है। आज हम देखेंगे पौलुस की प्रेरिताई का दिव्य दर्शन। हमने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, मनुष्य चांद पर जा चुका है, परंतु अंतरिक्ष यात्रा की तुलना में चांद की यात्रा कुछ नहीं है। चांद की दूरी बहुत अधिक है, परंतु मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों की दूरी की तुलना में यह दूरी कम है। यदि हमारी पड़ोसी आकाश गंगा की बात की जाए तो मनुष्य अंतरिक्ष में अधिक दूर नहीं गया है। जी हाँ, बाइबल में बड़ी रोचक बात है कि तीन मनुष्य अंतरिक्ष की यात्रा करके लौट आए थे। इनमें से एक भी पुराने नियम का नायक नहीं है। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे हनोक और एलिया के बारे में आप क्या कहेंगे। मेरे विचार में वे स्वर्ग में नहीं उठाए गए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:13 में प्रभु यीशु ने कहा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अब कोई कहे, मैं सोचता था कि एलिया स्वर्ग में उठाया गया था। जी हाँ, परंतु स्वर्ग तीन है। पहले स्वर्ग में आकाश की चिड़ियां रहती हैं, दूसरे स्वर्ग में सितारे हैं, तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। एलिया हवा में उठाया गया था। जिस समय यीशु ने यह बात कही तब तक अंतरिक्ष में जाने वाला अन्य कोई नहीं था। उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से उतरा था। इसके बाद दो मनुष्य स्वर्ग जाकर आए। पतमुस द्वीप में निर्वासित यूहन्ना स्वर्ग में उठाया गया था। वह वहां का दर्शन और सुनी हुई बातें प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखता है। वह तीसरे स्वर्ग में जहां परमेश्वर का निवास है वहां था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4:1-2 में वह उस स्थान का वर्णन करता है, मैंने जो दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। पौलुस दूसरा व्यक्ति था जो स्वर्ग में उठाया गया था। इसका विवरण हमारे सामने इस अध्याय में दिया गया है। अतः हमारे पास तीन व्यक्ति हैं जो स्वर्ग का विवरण सुना सकते हैं। प्रभु यीशु जो देहधारी परमेश्वर था, उसने सबसे अधिक स्वर्ग की चर्चा की, परंतु वह बहुत ही कम था। यूहन्ना के पास भी स्वर्ग के विषय कहने को अधिक नहीं था। पौलुस तो स्वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। पौलुस यहाँ जो कहता है उसका वह कभी उल्लेख नहीं करता। यदि उसे अपनी प्रेरिताई का बचाव नहीं करना होता तो वह अपनी अंतरिक्ष यात्रा की चर्चा भी नहीं करता। आइए अब हम देखें पौलुस का अनुभव। 2 कुरिन्थियों की पत्री 12:1 में लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। पौलुस मसीह के लिए कष्ट उठाने की घटनाएं तो सुना चुका है, उसमें अधिक महिमा नहीं थी। मेरे विचार में परमेश्वर की आत्मा ने उससे ये अनुभव लिखवाए जिससे कि कोई भी मनुष्य यह न कहे, मैंने पौलुस से अधिक दुख उठाए हैं। जी हाँ, हमें अपने भक्ति गीतों को गाने में सावधान रहना चाहिए। एक गीत है, मैंने अपना क्रूस उठाया है यीशु, सब कुछ त्याग करके तेरे पीछे चलने को, नंगा कंगाल तुच्छ त्यागा, केवल तू ही मेरा सब कुछ है। मेरे मित्रों, मैंने एक हॉलीवुड के सितारे को यह गाना गाते हुए सुना था। वह नवदीक्षित था। मेरे विचार में तो उसने अधिक कुछ नहीं त्यागा था। हम में से अधिकांश जनों के लिए यह गीत गाना केवल आडंबर है। उचित तो होगा कि हम यह गाना गाएं, ओह मेरा मुक्तिदाता लहू लुहान, मेरा प्रभु मरता है, क्या वह उस पवित्र सिर को मुझ नवीना के लिए बलि करता है। प्रभु यीशु मसीह ही जिसका महिमान्वन होना आवश्यक है। आज हम स्त्री पुरुष से उनके मन परिवर्तन की गवाहियां सुनते हैं। उनकी गवाहियां प्रायः एक अद्भुत मन परिवर्तन का वर्णन करती हैं। हमें साधारण मन परिवर्तन की गाथा तो सुनने को नहीं मिलती। गवाही में मैं जो सुनना चाहता हूं वह है मन में प्रभु यीशु का स्थान। जी हाँ, गवाही प्रायः मनुष्य की कहानी होती है कि वह पहले क्या करता था और अब क्या है, पाप में कैसा जीवन व्यतीत करता था और उसका मन परिवर्तन कैसा अद्भुत काम है, और प्रभु यीशु के बारे में बहुत ही कम कहा जाता है। सुनकर अचंभा होता है कि यीशु की उन्हें आवश्यकता थी भी या नहीं। अधिकांश गवाहियां जो मैं सुनता हूं उनमें प्रभु यीशु की स्तुति और उसका महिमान्वन नहीं के बराबर ही होता है। मुझे किसी का पत्र मिला जिसमें लिखा था, मैं एक धर्म तंत्र से मन फिराकर मसीह के पास आ गया हूं। यीशु उसके जीवन आचरण और कामों का केंद्र बन गया है। अब वह प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना चाहता था, यही महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, मसीह के लिए कष्ट उठाने की कहानी सुनाने के बाद अब पौलुस अपने दिव्य दर्शन और प्रकाशन की गवाही देगा। हम जानते हैं कि दमिश्क के मार्ग में प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया था। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि पौलुस इन दर्शनों की अधिक चर्चा नहीं करता है? ऐसी ही एक और घटना उसके जीवन में भी घटी थी। आइए हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 2 पद। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। प्रभु यीशु ही ने तो आकाश के पक्षियों के बारे में कहा था, वे हवा में उड़ते हैं परंतु बहुत ऊंचा नहीं जाते, उसके पार सितारों का स्थान है परंतु वह तीसरा स्वर्ग नहीं है जहां परमेश्वर का निवास है। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि चांद पर जाते समय उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा। कैसी मूर्खता की बात है। मेरे मित्रों, वे अधिक ऊंचे नहीं गए थे। उन्हें परमेश्वर का सिंहासन देखना हो तो तीसरे स्वर्ग में जाना होगा। पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठाए जाने का उल्लेख करता है। वह स्वयं ही बताता है कि इस पत्र को लिखने के 14 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था। जी हाँ, यह लगभग वह समय था जब उसने अपनी पहली प्रचार यात्रा की थी। उस प्रचार में हमें लुस्त्रा में उसके साथ हुई दुर्घटना का विवरण दिया गया है, जिसे हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पाते हैं। कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा हुआ समझकर उसे नगर के बाहर घसीटकर ले गए, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनाबास के साथ दिर्बे चला गया। मेरे मित्रों, क्या वह मर गया था? मेरे विचार में तो वे उसे छोड़ते नहीं यदि वह मर नहीं गया होता। मेरा अपना विचार है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया था। पौलुस निश्चित रूप से नहीं समझ पाता था कि वह उसका दर्शन था या वह वास्तव में स्वर्ग में उठाया गया था। यह अति स्पष्ट है कि वह अपना व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त कर रहा है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय के 3 पद में लिखा है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है। क्या वह वास्तव में मरकर स्वर्ग में गया था या उसे अचेतन अवस्था में दर्शन हुआ था? पौलुस इस विषय को हटवाद नहीं बनाता है और हमें भी हटवादी नहीं बनना है। जैसा मैं कह चुका हूँ, मैं मानता हूँ कि वह मर गया था और परमेश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया। चाहे जो भी हो, परिणाम एक ही था, उसने स्वर का दर्शन किया। आइए देखें उसका ब्यौरा दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 4 पद में। कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। अन्य कोई होता तो इस अनुभव के बारे में अनेक पोथियां लिख देता और संदेशों की श्रृंखला बरसा देता, परंतु पौलुस ने बस इतना ही कहा। यही उसका ब्यौरा है। बहुत गहरी बात करता है परंतु कहता बहुत कम है। उसमें विवरण नहीं है, व्यापार विभाग का विज्ञापन भी नहीं है, किसी का परिवर्तन नहीं है, विनिमय की वार्ता नहीं है, प्रदर्शन भी नहीं है, किसी नायक की पूजा भी नहीं है। मेरे मित्रों, वह बहुत ही थोड़े शब्दों में इस बात का अंत करता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। जी हाँ, यहाँ आत्म प्रशंसा नहीं है। यह मनुष्य जो स्वर्ग गया और वहां का अवर्णन बातें सुनी, वही मनुष्य एक दिन टोकरी में रखकर दीवार से उतारा गया था। आगे हम देखते हैं पौलुस की देह में कांटा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। पौलुस कहता है कि वह हमें अपनी शारीरिक दुर्बलता के बारे में बताएगा परंतु स्वर्ग के अनुभव के बारे में नहीं। क्यों? क्योंकि उसे इसकी चर्चा करना मना था। मेरे विचार में शैतान पृथ्वी से परमेश्वर की गवाही मिटाने के प्रयास में लगा रहता है। वह उनसे छुटकारा पाना चाहता है। वह दुर्बलता, रोग और देह में कांटों का उपयोग करता है। पौलुस की देह में यह कांटा क्या था? मैं आपको भेद की बात बताना चाहता हूं, परंतु आप उसे किसी को नहीं बताएंगे। मैं नहीं जानता है कि पौलुस ने तीसरे स्वर्ग में क्या सुना और क्या देखा। मैं नहीं जानता क्योंकि उसने हमें बताया ही नहीं है। एक प्राचीन टीकाकार ने कहा कि पौलुस की देह का कांटा उसकी पत्नी थी। मेरी समझ में उस टीकाकार के साथ पारिवारिक समस्या थी। वह गलत था। पौलुस विवाहित तो था परंतु उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। यह मेरा अपना विचार है। वह स्त्रियों के बारे में प्रेम के शब्द लिखता है, अतः मैं तो यह भी मानता हूं कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहता था। उसकी पत्नी उसके साथ ऐसे कष्ट उठाए उसे स्वीकार्य नहीं था। बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया। वह हमें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। मेरे मित्रों, किसी ने कहा कि कुत्ते के अनेक मित्र होते हैं क्योंकि वह दुम हिलाता है, जीव नहीं। यदि हमारे साथ तीसरे स्वर्ग की ऐसी घटना घटती तो हम अपनी जीभ हिलाते नहीं थकते। परमेश्वर ने पौलुस की देह में कांटा क्यों चुभाया? उससे नम्र बनाने के लिए। दर्शन के कारण आवश्यकता से अधिक घमंड ना करें। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, इसके विषय में मैंने तो प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। मेरा अपना विचार तो यह है कि पौलुस को देखने में कठिनाई होती थी। गलातिया प्रदेश की कलीसिया को लिखे पत्र में वह कहता है उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि उसे साफ दिखाई नहीं देता था। इस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब कांटा चाहे जो भी हो, पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसे हटा दे, परंतु परमेश्वर ने इनकार कर दिया। अब आप यह ना सोचे कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। उसने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी उसकी प्रार्थना सुनी थी, परंतु उसका उत्तर नहीं में था। जी हाँ, हम प्रायः परमेश्वर से वही मांगते रहते हैं जिसके लिए उसने एक बार मना कर दिया है। यदि परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी नहीं करता तो हम सोचते हैं कि वह हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर में उसने अधिकांश समय नहीं कहा है, और मैंने अंत में यही देखा कि उसका नहीं कहना ही मेरे लिए सर्वोत्तम उत्तर था जो वह दे सकता था। मेरे मित्रों, उसने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जी हाँ, परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि वह उसकी देह से कांटा तो नहीं निकालेगा, परंतु उसे सहने के लिए अर्थात सहन करने का अनुग्रह अवश्य प्रदान करेगा। इस संपूर्ण परिदृश्य में यह एक अद्भुत बात है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में पौलुस इतना अधिक दुर्बल था कि परमेश्वर का आत्मा उसे सामर्थ्य प्रदान करता था। मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। यह प्रभु के उत्तर के प्रति पौलुस की प्रतिक्रिया थी। पौलुस अपने उस अद्भुत दर्शन की अपेक्षा अपनी दुर्बलता पर घमंड करता था। आप इस बात को मन में बैठा लें, और अब कोई प्रभु के दर्शन का उल्लेख करे तो उचित होगा कि वे अपना मुंह बंद कर लें। जी हाँ, अति संभव है कि उसने दर्शन देखा ही नहीं था। वह रात में कोई ऐसा पदार्थ खाकर सोया था जो उसे खाना ही नहीं था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मेरे मित्रों, पौलुस पुराने नियम के शमशोन से कैसा विपरीत स्वभाव रखता था। शमशोन पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वह अति शक्तिशाली हो जाता था। लोग उसकी शक्ति पर आश्चर्य करते थे, परंतु एक दिन वह असहाय हो गया। बलवंत निर्बल हो जाते हैं और निर्बल बलवंत हो जाते हैं। परमेश्वर दुर्बल मनुष्य का उपयोग करता है। वह मुझे और आपको चाहता है ताकि मुझे और आपको उपयोग करे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। देखिए वह कैसे विस्तार से सुनाता है। वह क्षमा याचना करता है जैसे उसने पहले भी कई बार की है। पौलुस स्वयं को प्रेरित में सबसे छोटा मानता था, परंतु फिर भी उसने कहा, यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। कोई तो उसका बचाव करता, परंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के 12 पद में लिखा है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। प्रेरितों को कुछ चिन्हों के वरदान दिए गए थे कि वे अपने प्रचार को सिद्ध कर पाए। उन्हें चंगाई का वरदान प्राप्त था, वे मृतकों को जिला सकते थे, अन्य भाषा बोल सकते थे। उनकी अन्य भाषा वास्तविक स्थानीय भाषाएं थी, न कि अज्ञात भाषाएं। पौलुस गलातिया प्रदेश में प्रचार करता था जहां लगभग 50 अन्य भाषाएं थी। पौलुस उन सब भाषाओं में प्रचार करता था। जी हाँ, क्या उसने वे भाषाएं सीखी थी? नहीं। उस युग में परमेश्वर का वचन संपूर्ण रोमी साम्राज्य में शीघ्र और अति शीघ्र फैलाना था, अतः प्रेरितों को अन्य भाषाएं बोलने का वरदान प्राप्त था। आज प्रचारकों और अनुवादकों को वर्षों के अध्ययन द्वारा भाषाएं सीखना होता है। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच दिखाए गए। वे उसे इन चिन्हों द्वारा पहचान सकते थे कि वह एक सच्चा प्रेरित है। मेरे मित्रों, हमने धर्मशास्त्र का एक अद्भुत भाग पूरा किया है। किसी ने कहा कि पौलुस ने अपना स्वर का अनुभव इसलिए नहीं सुनाया कि उसका अनुभव सुनकर लोग बड़ी संख्या में स्वर के लिए निकल पड़ते। मैं यह तो नहीं जानता, परंतु यह तो निश्चित है कि स्वर्ग में जाने के प्रयास में विश्वासी खोए हुए संसार को अनदेखा कर देते हैं, उस संसार को जिसे मसीह यीशु उद्धारकर्ता की गहन आवश्यकता है। निसंदेह स्वर्ग एक अद्भुत स्थान है, परंतु परमेश्वर के वचन में उसका बहुत कम वर्णन है। संभवतः मानवीय भाषा में स्वर के विवरण हेतु शब्द ही नहीं है। हमारा उत्तरदायित्व है कि मनुष्यों को सुसमाचार सुनाएं कि एक दिन वे भी स्वर्ग में हों। मैं स्वर्ग के बारे में तो नहीं, परंतु स्वर्ग में विराजमान मसीह के विषय में अवश्य सुना सकता हूँ। हमें प्रभु यीशु की चर्चा करना है और उसी पर अपनी निगाह रखना है। ओह, इस पत्र पर या इस पत्र में इस बात पर कैसा बल दिया गया है। हम अनेक बातों में उसके सदृश हो सकते हैं यदि उस पर आंखें लगाए रहें। उसे निहारते रहने से हमारी सांसारिक तीर्थ यात्रा अधिक आसान हो जाएगी। सूर्य गर्म नहीं लगेगा, दिन भर की थकान बोझ नहीं बनेगी और जीवन के कांटे अधिक कष्टदायी नहीं होंगे यदि हमारा ध्यान या केंद्र प्रभु यीशु मसीह हो। मेरे मित्रों, आज आपका ध्यान किधर है? क्या आप संसार के उन वस्तुओं की ओर लगाए बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, या आप उस जगह पर अपनी निगाहें लगाए बैठे हैं जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं? मेरे प्रियो, जैसा कि आज हमने देखा है पौलुस के जीवन में कि उसने सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर पर और अपने निर्बलता पर उसने घमंड किया। आज मैं और आप किस पर घमंड करते हैं? परमेश्वर आज आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए ताकि वे भी सुनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। मुझे और आपको स्वर्ग की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है कि हम यीशु के बारे में चर्चा करें जो मुझे और आपको स्वर्ग ले जा सकता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आज आपने इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आज की इस अध्ययन के द्वारा आप सबको और अधिक आशीष प्रदान करे और सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को।